जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं, दुआ कीजिए अल्लाह हमें उसकी आयतों पर ईमान दे दे। तो इनसे कहो, हाईलाइट कीजिए, अल्लाह ताला कह रहे वेलकम कहो ऐसे सुनने के लिए, आने वालों के लिए जो ईमान से भरे हुए हों, जो मानने की नीयत से आए, जो मनवाने की नीयत से ना आए, जो सुनने की नीयत से आए, सुनवाने की नीयत से ना आए, जो समझने की नीयत से आए, समझाने की नीयत से ना आए। ऐसे टूटे हुए दिल वालों को एक खुशखबरी दे दो, फकुल सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम है। इससे पता चलता है कि इल्म सीखने के लिए आने वाले को वेलकम कहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म सीखने आता उसको वेलकम कहते, मरहबा कहते, क्योंकि वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको अल्लाह अपने इल्म के लिए बुलाए। आज इसमें हम सबको अपना इखलाक देखना है। बस दफा कुछ लोग दीन के लिए आते होते ही बेचारे नए हैं, उन्होंने कभी चखा नहीं, उनको प्रोटोकॉल नहीं पता, मैनर नहीं पता, तो अंदर आए, अब नहीं याद रहा तो बेल खुली रह गई, नहीं याद रहा कोई ढंग के कपड़े नहीं पहने थे। इट्स ओके, डोंट वरी। अगर डॉक्टर्स ये शर्त लगा दें कि हमारे पास कोई बीमार ना आए तो कितने दिन उनका क्लिनिक चलेगा? याद रखिए, जिस तरह बीमार लोग दुनियावी डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, इसी तरह रूहानी तौर पे बीमार लोग इल्म की महफिलों में आते हैं। नए आने वालों को सीने से लगाएं, स्माइल दें, मुस्कुराएं, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्यारा दिल लेकर आए हैं। पता नहीं पीछे से कितनी जंगें जीत कर आए हैं, रोका उनकी तो नींद ही बहुत बड़ा ताकत था, उनके तो घर का माहौल ही इतना बिगड़ा हुआ था। अगर वो आगे कोई बड़ी बात नहीं, किसी हाल खुलिए में आ जाओ, किसी रंग ढंग में आ जाओ, तुमसे कोई गलती भी होगी कोई बात नहीं, जहां दिल करता है वहां बैठ जाओ, सलाम अलैकुम, तुम पे सलामती, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, उनको ये खुशखबरी सुना दो कि तुम्हारे रब ने तो अपने ऊपर रहमो करम को लिख लिया, ये उसका रहमो करम ही तो है कि उसने तुम्हें यहां बुला दिया। कितनी खौफ है इसमें। आज उम्मत मुस्लिमा को दूसरों को दीन के करीब करने की जरूरत है। बस वह कुछ लोग खुद दीन के ऐसे खोल में मुब्तला हो जाते हैं, ना हंसना, ना बोलना, ना खाना, ना पीना, ना पहनना, ना ओढ़ना, एक बेजा किस्म की सख्ती में आते हैं। याद रखिए कि जब हम अल्लाह की दीवी नेमतों को इस्तेमाल करना छोड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर सख्ती आती है, फिर हमें हर बंदा गुनाहगार लगता है। ये अच्छे कपड़े पहनने वाले गुनाहगार, ये अच्छे खाने खाने वाले गुनाहगार, अच्छी गाड़ियों में आने वाले गुनाहगार। अब जब वो सब गुनाहगार है तो आपके अंदर तो रौनक आ गई ना कि ना मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, ना मैं स्माइल करती हूँ, ना मेरी गाड़ी अच्छी है, मैं तो टूटी फूटी गाड़ी में आती, कोई बात नहीं, रास्ते में 3 दफा रुक भी गई, क्या हुआ? मैं तकवा तो है, ये मैन मेड तकवा है। आज उम्मत मुस्लिमा को इस तकवे से निकालने की जरूरत है। दीन के नाम पर बाज़ दफा एक ऐसा स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया जाता है जिसको हर एक नहीं अचीव कर सकता। आप इमेजिन की ना कि एक बहुत ही खूबसूरत चीज है आसमान से लटक रही है और आप छत से लटकी है, चलो ये कह लीजिए। अब आप उस टोकरी में जिसमें खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं, खाने भी हैं, गिफ्ट भी हैं, उसमें रैपिंग पेपर्स भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन मसला क्या है कि वो रस्सी इतनी ऊंची है कि आप और मैं सारे नहीं जा सकते। हाँ, हम में से किसी 2-4 का कद इंतहाई लंबा होगा, खींच खून के वो उस तक पहुंचेगा। अब जब वो पहुंच जाएगा तो हम सारे रश्क से देखेंगे, हाय उनका कद लंबा, अल्लाह ने उनको ऐसा बना दिया वैसा बना दिया, हमारे कद छोटे के। तो अगर आप उस रस्सी को, टोकरी हुई है, आप उस रस्सी को थोड़ा सा नीचा कर दें ताकि हम सारे बेचारे ले लें, तो कौन सी राय अच्छी होगी? बस दफा दीन के नाम पे इतनी ऊंचे किरदार है। देखिए, अपनी जात पे करें, आपको जितना शौक है रातों को इबादत करें, घर में करें, आप अकेले में अपने आप को मुहासबे में पेश करें, नो प्रॉब्लम। हुक्म है कि अकेले में नमाज पढ़ो तो लंबी पढ़ो, जमात से कराओ तो बहुत छोटी जमात कराओ। क्यों? ताकि दूसरों को अपने साथ लेकर चलो। मिल्लत और उम्मत कब बनती है? जब नेकियों को हर एक ही अप्रोच में कर दिया जाए। और अगर हर जगह ये हमारे शहर में, हाँ वो फलां बाजी हैं वो दर्स देती हैं, वो मौलवी साहब हैं वो जवाहां करते, वो तबलीग करने वाले वो तबलीग करते हैं, वो 3 माह का चिल्ला करते हैं, और वो दावा देते हैं वो दावा वाले हैं, तो फिर हम कौन है? हम गुनाहगार हैं जी, हम तो इतने नेक नहीं हो सकते। तो वो लोग फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस वक्त कुरान के इस टेम्परेचर को लोग करके हलाल का फर्क हराम से मकरू, देखिए कई लेवल्स हैं, मुस्तहब, रिकमेंडेड, फिर पसंदीदा, उससे अच्छा, उससे अच्छा। मसलन आप देखिए कि आप कोई चीज खरीदने जाते हैं बाजार में, कोई भी ग्रोसरी देख लीजिए, कई स्टैंडर्ड है। आपको $1 की भी ब्रेड मिलेगी, 2 की भी मिलेगी, 3 की भी मिलेगी, जिसको पेट भरना है वो 1 की तो ले कम अज कम। आप कहते नहीं, इस स्टोर में $5 की ब्रेड है, अब जिसके पास 5 नहीं वो भूखा रहेगा। लोगों को एक ब्रेड वाला दीन दें पहले, $1 वाला दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा उनका अपना दिल चाहेगा, $2 पे आएंगे, फिर तीसरे पे आएंगे, और एक वक्त आएगा आप तो 5 पे रुके हैं, वो 7 पे पहुंच जाएंगे। नए लोगों को मोहलत देना, ये है कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा। और याद रखिए, अल्लाह कभी किसी को डिस्करेज नहीं करता। 100 लोगों को कत्ल करके आने वाला शख्स भी जब अल्लाह के दर पे आया तो अल्लाह ने उसको भी बख्श दिया। हर दिन गुनाह और जिना में गुजारने वाले किफल को भी अल्लाह ने एक आखिरी लम्हे पे खौफ की वजह से उस औरत को आजाद कर दिया जिससे तय कर चुका था कि तुम्हें पैसे इस शर्त में दूंगा कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी। लेकिन जब उस औरत ने उसको ऐन वक्त पे कहा कि ऐ किफल, अल्लाह से डर जा, उस मोहर को ना तोड़ जो अल्लाह ने रखी, तो कहने लगा तू क्यों डरती है, मैं तो नहीं कभी डरा, मैं तो हर रोज ये काम करता हूँ। कहने लगी मैंने ये काम कभी नहीं किया। वो वक्त था जब किफल के दिल पे अल्लाह की रहमत हो गई, कहा जा चली जा और वो पैसे भी ले जा। वो तो चली गई और किफल और उसका रब है, रो रहा है, अल्लाह मैं कितना गुनाहगार, मैं क्यों नहीं रोया, मुझे क्यों खौफ नहीं आता। आज की जुबान में कह ले कि ब्रेन हेमरेज हो गया होगा, आप कह लीजिए हार्ट अटैक हुआ, सुबह से पहले खबर हुई कि वे किफल मर गया। और लोग इस शौक से देखने आए कि आओ देखें किफल जहन्नुम की किस वादी में गिरा, क्योंकि उस दौर में लिखा आता था दरवाजों पे जब कोई मरता था कि किधर गई। तो आज उम्मत मुस्लिमा पे अल्लाह का एहसान है कि हमारे तो दुनिया में नहीं पता पोल, ये तो आगे जाके खुलेंगे। तो जब लोग गए ये देखने कि वो जहन्नमी हो गया होगा, वहां लिखा होता कद गफर अल्लाह किफला, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया, क्योंकि कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा। तो हमेशा लोगों को अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाएं। नाफरमानियां करके आने वालों के दिल तो और टूटे होते हैं, उनको तो और ज्यादा सीने से लगाए, क्योंकि वो तो गुनाहों के कचोकों में, उनको तो रातों को नींद नहीं आती, वो तो डिप्रेशन में। फरमाया अन्नहु मन अमिला मिनकुम सुअम बिजहालतिन सुम्मा ताब मिन बादिही वअस्लहा फअन्नहु गफूरुर रहीम। और जो कोई इस गुनाह के बाद जो वो कर चुका नादानी की वजह से फिर तौबा करे और इस्लाह कर ले, तो वो इसे माफ कर देता है और नरमी से काम लेता है। बस इतनी सी बात है। लोगों को वे आउट दीजिए, रास्ता दीजिए, एग्जिट दीजिए। और जितना इल्म होगा, नोट कर लीजिए ये एग्जाम्पल, इल्म अमल के लिए लाजिम है। मिसाल आप देखिए कि वुजू नमाज की शर्त है ना, लेकिन अगर कोई सिर्फ वुजू करके बैठ जाए तो नमाज तो नहीं हुई ना, वुजू करेगा फिर नमाज पढ़ेगा। इसी तरह से इल्म वुजू है और अमल करना नमाज है। इल्म के बगैर अमल नहीं आता, जैसे वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। और सिर्फ इल्म का पहाड़ी बनते रहे आप, माशाल्लाह खूब डिग्रियों पे डिग्रियां, एक कोर्स दूसरा कोर्स, उससे कर उससे कर इधर कर, आप कहते हैं हम PhD कर चुके, MA कर चुके। ये बताइए आपके अपने किरदार में क्या चेंज आई, आपसे दूसरों को क्या मिला। सिर्फ अमल भी काम नहीं जब तक उसके बाद इल्म नहीं होगा, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब इस्लाह होगी तो उसको माफ भी कर देंगे। वकज़ालिक नुफस्सिलुल आयात, और इसी तरह हम अपनी निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं ताकि मुजरिमों की राह बिल्कुल नुमाया हो जाए। कल क़यामत के दिन को ये ना कह दे कि अल्लाह हमें पता ही नहीं चला, हमारे साथ पता नहीं ज्यादती हो गई, क्या करें कैसे करें, बस पता नहीं क्या मामलात हमारे साथ बिगड़ गए। अल्लाह ताला बंदे को माफ करने के बहाने ढूंढता है। قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله। ए नबी इनसे कहो तुम लोग अल्लाह के सिवा जिन दूसरों को पुकारते हो इनकी बंदगी करने से मुझे मना किया गया। कहो मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करूंगा। नोट करें हम हर गुना, आप पीछे मक्की सूरतों में यहूद और नसारा के मामलात में ये पढ़ चुके कि जब कभी उनके रसूल वो चीज लाते बीमा ला तहवान हुसुकुम तो वो उनको कत्ल कर देते, ज़िबा करते। ये सूरत मक्की सूरत है और मक्का में सिर्फ तीन सब्जेक्ट थे, तौहीद, रिसालत और आखिरा। ये सिर्फ इनके शिर्क पे चोटें पड़ रही हैं और अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि नबी इनको कह दो कि ये जो तुम शिर्क कर रहे हो ना, असल में अपनी ख्वाहिशों के साथ पूज रहे हो। याद रखिए हर बुत के पीछे एक ख्वाहिश होती है। बुतों को कौन पूछता है आज, बुतों को नहीं पूछते, वो ख्वाहिशें होती हैं। वजह के उसको खुदा बना लो जो आगे से कुछ करने का हुक्म ना दे, ये है बुत परस्ती। जिंदा जावेद अल हय अर अल कयूम अर अल हाकिम रब को मानना इसलिए मुश्किल है कि आज इसके आगे सजदा किया, इसने कल कहना सीधे हो जाओ, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, सॉरी वी डोंट लाइक दिस गॉड। लोग पूजना चाहते हैं लेकिन उस जात को जो आगे से कुछ करने का हुक्म ना दे, तो हर बुत के पीछे ख्वाहिश है। और मक्का वाले तो लिटरली ऐसे करते थे, कोई बुत रखते घर में, लाते बाजारों में बिकते थे उनके बुत, खरीद के लाते घर में रखा, कुछ दिन रखा, पता चला फितरी तौर पर कोई बीमारी घर में आ गई, घर में झगड़ा हो गया, कहते बस ये बुत की मनहूसियत है, इसको पकड़ो और फेंक दो। अपना बुत फेंक देते, दूसरा ले आते, जिस कबीले से लड़ाई होती उसके बुत को काबा में से निकाल के अपना डालते। ये सब कहानियां थी। अल्लाह ताला कहते तुम्हारी ख्वाहिशों के ऊपर मैं तो नहीं चलूंगा। और आप यहां नोट कीजिएगा, अगर अल्लाह का नबी ये कह रहा है तो मुझे और आपको क्या कहना है कि अगर मैंने ऐसा किया क्या कि तुम्हारे पीछे लग गया तो और गुमराह हो गया तो राह रास्त पाने वालों में से नहीं रहूंगा। आज उम्मत मुस्लिमा कई हद तक ऐसी चीजों में खो गई, कहीं रस्म व रिवाज के नाम पे, शादी ब्याह के नाम पे, मीडिया के नाम पे, कि जहां उनको तसल्ली नहीं होती जब तक कि वो किसी ऐसी चीज को अपनी जिंदगी में ना ले आए, चाहे वो किसी रस्म के नाम पे कहीं जिसका ताल्लुक पीछे से मुशरिकाना अकायद के साथ है। और फिर हम कहते हैं कि मेरे घर क्यों नहीं बसते। कभी आप सोचिए कि जब शादियों पे हम हिंदुआना रस्में करते हैं, वो कौन सा इस्लाम रह जाता है, वो कौन सा दीन है? फिर उसके बाद अल्लाह की बरकत आए, अल्लाह की तरफ से उस जोड़े के दिल में प्यार बढ़े, अल्लाह उनको दिल का सुकून दे दे। ये तो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह दे दे, वरना अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें जिंदगी के किबले भी दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। कहो मैं अपने रब की तरफ से एक दलील रोशन पर हूँ और तुमने इसको झुटला दिया, अब मेरे इख्तियार में वो चीज नहीं जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। इनिल हुक्म इल्ला लिल्ला, फैसले का सारा इख्तियार अल्लाह को है, वही अमरे हक बयान करता है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। कहो अगर कहीं वो चीज मेरे इख्तियार में होती जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान कभी का फैसला हो चुका होता, मगर अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है और जालिमों के साथ क्या मामला किया जाना चाहिए। इसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिन्हें इसके सिवा कोई नहीं जानता। बहरोबर में जो कुछ है सबसे वो वाकिफ है। हाईलाइट कीजिएगा, फरमाए वमा तस्कुतुमिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, और कोई पत्ता भी जो ऐसा नहीं कि जमीन पे गिरे और उसको इसका इल्म ना हो। आपके इस शहर में भी ऑटम आती होगी, पत्ते गिरते हैं दरख्तों से, कितना हसीन मंजर होता है ऑटम का। जब कभी जमीन पे गिरे हुए पत्ते दिखते हैं तो मुझे यह याद आती है। और मैं अगर इस वक्त इस शहर के दरख्तों और पत्तों की बात ना करूं तो शायद नशुक्री होगी। कितना ग्रीन है आपका ये शहर, रास्तों से आप गुजर के आते होंगे, मिलियन ट्रिलियन बल्कि अनफिनिट किस्म के पत्ते हैं। क्या मैं और आप इन पत्तों को गिन सकते? दुनिया का कोई कंप्यूटर ऐसा है कि जो अटलांटा शहर के सारे दरख्तों के पत्तों को गिन सके, फिर उसमें से गिरे हुओं को अलग कर सके? अल्लाह की जात इतनी बड़ी जात है कि जो इन पत्तों के गिरने, इनकी तादाद, इनके दोबारा उगने और इन सब चीजों को जानती है। तो क्या वो मेरे दिल का भेद नहीं जानती? मैं क्या तड़प रख के इधर आती उसको नहीं पता? मैं किन मजबूरियों से निकल कर आती उसको नहीं पता? पूरा यकीन रखिए कि अल्लाह को आप सबका पता है और अल्लाह को आपकी बड़ी कदर है, अल्लाह को आपसे बड़ा प्यार है। आगे हम पढ़ेंगे सूरत मुल्क में, अला यालमु मन खलक, क्या वो ही नहीं जानेगा जिसने तुमको पैदा किया? और यह सच है कि अल्लाह की जात ने हमें पैदा किया, वो हमें हमारी माओ से ज्यादा प्यार करता है। तो कभी उसको अपने से दूर ना समझे, और जितना उसको अपने करीब समझेंगे उसको मेरा इल्म है, तो आप अंदर से निखरते जाएंगे, फिर उससे रोएंगे, उससे धोएंगे, उस अपनी चीजों को पूरा करेंगे, और इसी तरह फिर इंसान गुनाह करते हुए भी शर्माएगा। हाय मेरा रब मुझे देख रहा है, क्या मैं उसके साथ मामला करूंगी तो क्या उसको नहीं पता चलेगा? तो फरमाया कि याद रखो, जो कोई पत्ता गिरता है उसको अल्लाह ताला जानता है। जमीन के तारीक पर्दों में कोई दाना ऐसा नहीं जिससे वो बाखबर ना हो। किसान तो बीज डाल के बाद में ढूंढ नहीं सकता किधर गया था दाना, अल्लाह को पता है वो किधर है, तभी तो उसकी हिफाजत करता है। खुश्क और तर सब एक खुली किताब में लिखा हुआ है, वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज करता है। ये आयतें सिर्फ थॉट प्रोवोकिंग है, अपना अल्लाह के साथ ताल्लुक दुरुस्त करने वाली आयत है। सोई तो कैसे सो गई? आजकल तो आपने भी देखा होगा, बस जरा सा पढ़ने की देर है, आप ये कहते हैं ना जरा कमर टिका लूं, तो फिर वो कमर टिक ही जाती है, आपको परवाह भी नहीं, आप बिस्तर पे, आप जमीन पे, कहां है, कैसी गहरी नींद आती है। क्यों? क्योंकि आपके पास वक्त थोड़ा है, आपको सिर्फ अपने आप को फ्रेश अप करने के लिए सुलाना है, ना कि आपने गफलत की नींद सोना है। कौन सुलाता है? आप में से किसी को अगर नींद का मसला हो वो इस नेमत को जान सकता है। रात इतनी लंबी लगती है जिस रात में नींद ना आए, इमेजिन कीजिए अगर नींद ना होती। रात जब हम तरावी के बाद घर गए हम कितने टूटे हुए थे, और अब आए तो हम कितने फ्रेश हैं। अल्लाह की जात ने नींद देकर हमें दोबारा एक काम करने के तैयार कर दिया। इसी तरह की गहरी नींद आएगी, और वो कौन सी होगी? जो हमें इस दुनिया से ले जाएगी और हम एक दूसरे जहान के लिए तैयार हो जाएंगे। फरमाए वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज करता है और दिन को जो कुछ तुम करते हो इसे जानता है। फिर दूसरे रोज वो तुम्हें इसी कारोबार के आलम में वापस भेज देता है ताकि जिंदगी की मुकर्रर मुद्दत पूरी हो। हम हर रोज सोकर क्यों उठते हैं? ताकि जिंदगी पूरी हो। आखिरकार इसी की तरफ तुम्हारी वापसी है। आप कह लीजिए, हर रात की नींद हमें हमारी मौत याद दिलाती है, ہر روز صبح کا جاگنا ہمیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی یاد دلاتا ہے. کس کو صبح اٹھتے ہی یاد آتا ہے کہ اللہ اسی طرح ایک دن اٹھائی جاؤں گی, وہ ایک نیا جہان ہوگا, وہ ایک نئی دنیا ہوگی اور وہاں میں اپنے اعمال ناموں سے ملاقات کروں گی. کیا دعا ہے صبح اٹھنے کی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو کیا میں اس دن کے لیے تیار ہوں؟ کیا وہاں جا کر اٹھوں گی تو کیا میں وہاں خوشی کے ساتھ اٹھوں گی؟ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ اپنے بندوں پہ پوری قدرت رکھتا ہے. اس پہ 3 سیکنڈ تک غور کیجیے. جب کبھی اللہ کے ہاتھ سے نکلنے کو دل چاہے, نافرمانی کو دل چاہے, تو اس آیت کو یاد کر لے کہ اس کو اپنے بندوں پہ پورا غلبہ ہے. اس کو پتہ ہے تم کیا کرو گے, کدھر جاؤ گے, کس طرح کے معاملات ہوں گے, اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے, یہاں تک کہ جب کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے. امیجن کیجئے اپنی موت کو. اس وقت ہم نہیں کر سکیں گے امیجن, وہ وقت تو بہت سخت ہوگا, کروشیل ٹائم ہوگا. اس وقت تو انسان کا ایک پاؤ زمین پہ اور ایک آسمان پہ. آج اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی موت کو یاد کرو. کیوں کہا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب خود کر لو. کم از کم ایک بار تو ہم دن میں اپنی موت کو یاد کریں. جب موت آتی ہم کہتے ہیں اچانک آ گئی, اچانک تو نہیں آتی. جس دن میں اور آپ اس دنیا میں آئے اس دن سے ملک الموت ہمیں تاڑ رہا تھا. روایات سے نمبر تک ملتا ہے کہ ملک الموت ایک دن میں انسان کو کتنی دفعہ کے جھانک کے جاتا ہے کہ ابھی اس کے اتنے دن, اتنے منٹ, گھنٹے, اور ہم تو سال گنتے ہیں نا, ہم سالوں کو گرے لگاتے ہیں. اللہ کے پاس ہماری عمر لمحوں کی صورت میں, فرشتوں کے پاس ہمارے سانس لکھے ہوئے ہیں, وہ ہمارے سانس گن رہے ہیں. 1 لاکھ سانس ہو گئے, 2 لاکھ ہو گئے, 4, ان کو اتنا پتا ہے کہ ابھی اس کو دنیا میں اور کتنے سانس لینے ہیں. جس انسان کی موت اس کے سر پہ کوک رہی ہو, بتائیے وہ غافل رہ سکتا ہے؟ وہ وقت ضائع کر سکتا ہے؟ وہ اس دنیا میں اپنی نعمتوں کو صرف اپنی امانت سمجھتے ہوئے اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہوگا. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. فرشتے ایسے ڈھل مل نہیں ہیں, ایسے ورکرز نہیں ہیں کہ جن کو کہو کچھ اور کرے وہ کچھ اور. منٹ, سیکنڈ, مائکرو سیکنڈ میں وہ روح نکال لیتے ہیں. ایکیوریٹ ٹائم پہ جان نکلتی ہے, نہ آگے نہ پیچھے, اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. چلو یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی, آگے کیا ہے؟ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق, پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. سوچی, حقیقی مولا وہ ہے. دنیا میں جھوٹی چیزوں کے سامنے کھڑے پیے اپنے آپ کو لے کر پڑھتے, اللہ کہتا ہے کہ تم نے ایک دن مجھے فیس کرنا ہے. وہ دن یاد کیجئے جس دن ہم اپنے رب کا سامنا کریں گے, کس منہ سے اس کو اپنا منہ دکھائیں گے. الا لہ الحکم, خبردار ہو جاؤ, فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں. وہو اسرع الحاسبین, اور اس کو حساب لینے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی. ہی از سوئفٹ ان اکاؤنٹنگ, ہم تو حساب لیتے کرتے کھولتے بیٹھے رہتے ہیں. اتنی خوبصورت آیتیں پڑھی ہوئی مشاری نے, وقت کی کمی کا احساس نہ ہو تو ابھی سے شروع کروا دوں آپ کو کچھ آیتیں بیچ میں سنوانی, لیکن انشاءاللہ آگے جا کے ہم کریں گے ایسا. یہ ایک ایسا پیارا قرآن ہے, صرف اس کی عربی کی آیت ہمارے دل پہ پڑ جائے تو ہمارے اندر ایک حرکت شروع ہو جاتی ہے.